भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से छठा स्कंध अध्याय 7 और श्लोक 13। इस अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। या पारमेष्टम धिषणम अधिष्ठितान न कंचना प्रत्युत्तिष्ठेत इति ब्रुजो धर्मम ते न परम विदुहु। यः पारमेष्टधिषणम् अधिष्ठितम् न कञ्चन प्रतितिष्ठेदिति ब्रूहु धर्मम् तेनापरम् विदु। या पारमिष्टम दिशणम अधिष्ठितं न कंचना प्रत्युत्तिष्ठेदिति बुरुयो धर्मं तेनापरं विदु। या पारमिष्ट दिशणम अधितिष्ठितं न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठितेदिति ब्रूयो धर्मं तेनापरं विदु। वो हेलीकॉप्टर बंद कर दो पीछे वाला। और कोई माता जी और कोई या जो भी पारमिष्ट्यम राजसी धीषणम सिंहासन पर निम्बारका, तुम्हारे लिए भगवान वेटिंग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वेरी इरिटेटिंग। निम्बारका देख नहीं रहा है। पुजारी का मतलब पंचुअलिटी एंड क्लीननेस। पंचुअलिटी होनी चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए। भगवान तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे। वेरी बैड। तुम्हारा ये सेवा बंद आज के बाद। स्टिल दिस फेलो डजन लिसन, रियल क्रैक फेलो। They should close that door at least. ना नहीं कंचन कोई भी प्रतिष्ठेता पहले उठना चाहिए। इति इस प्रकार ब्रूयु जो ऐसा कहते हैं। धर्मम धर्मादेश ते वे ना नहीं परम अत्यधिक विदुह जानते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धर्म धार्मिक नियमों को नहीं जानता है। तात्पर्य इस प्रसंग के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु ब्राह्मण तथा वैष्णव का आदर करें। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है, जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावना में अग्रसर हुआ जाए, भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कितनी भी संपन्न क्यों न हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर वर्ण प्रणाली का पालन करते हैं। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में और तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गोरक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज के तीनों वर्ण, तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाता है। वैदिक नियमों तथा विधानों से भीत समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्म तेन विदु परम विदु, ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूसुपुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् शोलम कृषिष्टम भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेम च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो छठा स्कंद जो है पोषण विभाग है, भगवान अपने भक्तों का पोषण कर, सबका पोषण करते हैं, लेकिन जो भक्त है उसे विशेष रूप से पोषण करते हैं। भक्त का मतलब भगवान के लिए कुछ करना। इस प्रसंग में हम देखेंगे कि इंद्र का कैसे भगवान पोषण किए हैं। गलत काम इंद्र किए थे, फिर भगवान पोषण किए, क्योंकि वे भगवान के लिए कुछ करते हैं। यह अध्याय, इस अध्याय का मैं समरी बतला दूंगा, उसके बाद में श्लोक पर विचार करेंगे। इस अध्याय के पूर्व में सुखदेव गोस्वामी विभिन्न वंशावलियों का वर्णन किए, उसमें दीति और अदिति के वंशावलियों का वर्णन किए, कैसे अदिति के गर्भ से देवता लोग और दीति के गर्भ से असुर लोग उत्पन्न हुए। अंत में वे बतला रहे थे कि द्वादश आदित्यों में से एक आदित्य थे, उनका नाम था त्वष्टा। वे सुर खानदान के थे, देवकुल के थे, और उसके बाद असुर वंश में एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था रचना। तो रचना और त्वष्टा से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था विश्वरूप। तम बब्रिरे सुरगण स्वस्त्रियम दिशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा अर अंगिरसेन यत्। कहते हैं कि यद्यपि विश्वरूप देवताओं के परम शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बना लिया, स्वीकार किया, बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसलिए इन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी थी। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में ये कहते हैं कि देवता लोग एक समय अपने गुरु का अपमान किए थे, जिसके चलते उन्हें गुरु त्याग दिए थे। अब यहीं से ये अध्याय प्रारंभ होता है। तब परीक्षित महाराज को प्रश्न हुआ कि गुरु ने उन्हें त्याग दिया, कारण क्या था त्यागने का? आजकल चेले लोग गुरु को त्याग देते हैं, पहले गुरु त्यागते थे, आजकल चेले लोग त्याग देते हैं, पहले गुरु त्यागते थे। जमाना बदल गया है, आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, दीक्षा ले लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी लेते हैं, और कभी कभी तो इतना भी दुस्साहस करते हैं कि अपना कंठी और माला कहते हैं गुरु जी ले लीजिए आप, अब हो गया मेरा। लेकिन पहले गुरु त्यागते थे। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, श्री राजो वाच कस्य हेतो परित्यक्तः आचार्येण आत्मना सुरः एतद् आचक्ष्व भगवन् शिष्याणाम अक्रमं गुरो। क्या कारण था, शिष्य ने क्या अपराध किया था? शिष्याणाम अक्रमं गुरो, अपने गुरु के प्रति शिष्य यानी देवताओं ने क्या किया था, क्या अपमान किया था जिसके चलते आचार्य उन लोगों को त्याग दिए थे? प्रश्न क्लियर है, ये प्रश्न पूछे। अब उसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री बादरायणी उवाच इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्यम मदो उल्लंघित सत्पथ। एक समय की बात है, इंद्र जो त्रिभुवन नाथ है यानी भूर्भुव स्व, इस तीनों लोक का जो मालिक त्रिभुवन नाथ, ये त्रिभुवन के ऐश्वर्य से मद उल्लंघित सत्पथ, मद से तीनों लोक के ऐश्वर्य के मद से वो उल्लंघन किया। किसका उल्लंघन किया? सतपथ का, धार्मिक आचरण का, सदाचार का। माता कुंती अपने प्रार्थना में भगवान जा रहे थे द्वारिका, तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उन प्रार्थनाओं में उन्होंने कहा है, जन्म ईश्वर जा श्रुता श्री भी एदमाना मद पुमान नय भारती अभिधा तुम वै तुम अकिंचन गोचर। ये मद है जो व्यक्ति को अहंकार में चूर कर देते हैं, व्यक्ति अहंकारित हो जाता है। गलती व्यक्ति में नहीं होती है, इसलिए कहते हैं हेट सिन नॉट सिनर, पाप से डरो पापी से नहीं। कोई पापी तब होता है जब उसको पाप आच्छादित कर लेता है, तो खराब चीज है वह है पाप न कि पापी। तो इंद्र खराब हो गए, उनमें अहंकार आ गया, मद आ गया। वह मद खराब था जो कि इंद्र को खराब कर दिया, न कि इंद्र। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वायर है, तार तार है, लेकिन उसमें करंट यदि आ जाए और कोई छुए तो इलेक्ट्रिफाइड वायर है, वो करंट मार देगा। तार बेचारे में क्या खराबी है, तार तो तार है लेकिन उसमें करंट आ गया है। तो वैसे ही पोस्ट पोजीशन का जो करंट है बड़ा खतरनाक है। चाहे मंदिर का पोस्ट पोजीशन हो, चाहे राज्य का हो, चाहे अपने घर का ही क्यों ना, घर में मालिक होते हैं ना घर का है? चाहे कंपनी का चेयरमैन हो, कोई भी हो, ये पोस्ट पोजीशन बड़ा खतरनाक है। यदि यह न समझा जाए कि हम भगवान के बिहाफ में कर रहे हैं तो ये मद आ जाएगा। जैसे हनुमान जी कुर्सी पर बैठ गए हैं, ये कुर्सी कहलाता है। देखिए बैठे हुए हैं, पसीना आ रही है, कोई चिंता नहीं। हनुमान जी लंका जाना है कि नहीं? तो माता कुंती कहती है जन्म ईश्वर ज श्रुत श्री भी, जन्म उच्च कोटि में जन्म, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में जन्म लेना। आजकल तो लोग ब्राह्मण कहना स्वीकार नहीं करते हैं, आजकल जो ब्राह्मण होते हैं वो भी कौन किसको रिजर्वेशन है, कौन है, ओबीसी है, एबीसी नहीं ओबीसी है, तो ओबीसी में नाम लिखवाना चाहते हैं ब्राह्मण भी। ये देखो लोग ओबीसी बनना चाहते हैं, पहले लोग ब्राह्मण बनना चाहते थे, अब लोग शूद्र बनना चाहते हैं, आज की यही परंपरा है। पहले लोग ब्राह्मण बन, ब्राह्मण कोई बन सकता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म ना आ जाए तो शूद्र, सब शूद्र होते हैं। क्या जमाना बदल गया है, पहले लोग ब्राह्मण बनना चाहते। प्रभुपाद जी बड़े खुश थे कि मैं मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है? आज ब्राह्मण लोग शूद्र बनकर खुश होना चाहते हैं, ये क्या जमाना आ गया। न बप्पा न मैया सबसे बड़ी रुपया है, पैसा के लिए कुछ भी कर लेंगे, पैसा के लिए बन रहे ओबीसी ना। एनीवे, तो उच्च कुल में जन्म लेना अहंकार घोतक था, ये द्वापर युग का बात था। तो जन्म ईश्वर ज और धन संपत्ति लक्ष्मी प्राप्त करना, जो नारायण के बिना लक्ष्मी को वापरना चाहेगा वो अंधा हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पर चढ़कर आती है, उनका सवारी कौन है, उल्लू। तो जो लक्ष्मी को स्वीकार करेगा बिना नारायण का तो उल्लू बनकर के रह जाएगा, अंधा हो जाएगा। एक मुझे कथानक याद आ रही है कि एक बार भगवान नारायण बैठे हुए थे संडे का दिन था, फ्री दिन था। लक्ष्मी जी आई और बड़ा सेवा हुआ करती थी। लक्ष्मी जी का तो काम है पाद संवाहन करना, पैर दबाना। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछी, प्रभु एक मेरे पास प्रश्न है। भगवान बड़े खुश हुए, कम से कम लक्ष्मी जी प्रश्न राज कर रही हैं। ले क्या प्रश्न है? कहा मेरे पास प्रश्न यह है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आप पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हां मैं भी ऐसा कुछ सुना हूं। तो लक्ष्मी जी कहे कि लेकिन ऐसे कैसे? कोई भी काम होता है तो धन संपत्ति चाहिए। यदि एक किताब भी खरीदना है तो पैसा चाहिए। हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं, पहले किताब देते हैं, बाद में 100 रुपया है, मुफ्त नहीं देते हैं, पैसा चाहिए। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पैसा चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, सब तो मैं प्रोवाइड करती हूं, तो आप मेंटेनर कैसे हो गए? प्रश्न अच्छा था कि अब लक्ष्मी जी सब कुछ देती है तो विष्णु कैसे पालक हो गए? पालन तो लक्ष्मी जी को करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बात सही कहा आपने, अब चेंज करा देंगे। अब भगवान क्या कहते, लक्ष्मी जी की बुद्धि ऐसे हो गई थी, उल्लू पर बैठ करके आई थी, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी। तो एक दिन लक्ष्मी जी और भगवान जा रहे थे कहीं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक मुर्दा, एक व्यक्ति मर गया था, उसको लोग श्मशान घाट ले जा रहे थे। तो क्या बोलते हैं श्मशान घाट ले जाते समय? राम नाम। अभी बोल लो, मरने के बाद सुनाई नहीं पड़ेगा, अभी तुम्हें सुनाई पड़ेगा। राम नाम सत्य है। जय श्री गोनिताय राधारस व्यास तनोचरमं की जय। तो लक्ष्मी जी बड़ी खुश थी क्योंकि आज पहले बार उनको विक्ट्री हुआ था, अब उनका नाम प्रपोज होने वाला था मेंटेनर के रूप में। तो कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहती थी कैसे वो मेंटेन करती है। तुमने कहा प्रभु देखना है, देखिए मैं कैसे मेंटेन करती हूं, कैसे लोगों को। तो उन्होंने अपने हाथ से वो सोने का गिन्नी वहां पर गिरना शुरू किया जहां पर श्मशान लेकर जा रहे थे लोग। हरादास आप क्या करते यदि किसी को श्मशान घाट ले जा रहे थे और ऊपर से सोने के गिन्नी का वर्षा होने लगे तो आप क्या करोगे? सोने का लेकर के मंदिर में दे देने का? ये सबके सामने बोलते हैं, पता नहीं बाद में क्या करेंगे, कहेंगे हमारे डिपार्टमेंट में रहेगा अभी। प्राय यही लोग करेंगे, ठीक कह रहे हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार श्मशान घाट जब किसी को ले जा रहे हैं तो बीच में नहीं रखना चाहिए, उसे श्मशान घाट पर पहुंचाना चाहिए, बीच में नहीं रखना चाहिए। तो सब लोग उस मुर्दे को छोड़ करके और सोने का गिनी बिटोरने लगे। तो लक्ष्मी जी का प्रभु देखा कितना क्या हो रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि हां मैं जानता हूं, जहां आप रहोगी वहां अधर्म ही फैलेगा। तो लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई, क्या वैसे क्यों कह रहे हैं अधर्म फैलेगा? कहा ये अधर्म नहीं तो और क्या है, अरे देखो वहां कोई उसका बेटा है, कोई भाई है, कोई सगे संबंधी है, उसको श्मशान घाट ले जाना चाहिए। श्मशान घाट ले जाने के बजाय उसको वहां रख करके वो सोने का गिनी बटोर रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है तो क्या है? तो भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी जी अब मेरे पास एक प्रश्न हो गया। तो लक्ष्मी तो खुश थी कि हमारा चल रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा बताइए क्या प्रश्न है। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो जब आप लक्ष्मी जी सोने का गिनी गिरा रही थी तो सब लोग सोने का गिनी बिटोर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, मरा हुआ है, वो क्यों नहीं बिटोर रहा था? अब लक्ष्मी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। जब स्त्रियां हार जाती हैं तो क्या करती है? अंतिम अस्त्र क्या है स्त्रियों का? माता जी बताओ। गंगा जमुना बहने लगता है आंख से, ही ना, रोने लगती है। तो लक्ष्मी जी रोने लगी, भगवान कहे कि तो बड़ा हल्ला हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा, लोग समझे झगड़ा हो गया है। अगर वो मत रो, मत शांत रहो। कहा कि देखो आपको मालूम है जिन जिन लोगों के हृदय में मैं स्थित हूं वे लोग सोने का गिनी उठाए, और जिसके हृदय से मैं निकल गया हूं वो नहीं उठा पाया, जो मुर्दा है उसके दिल में मैं नहीं हूं इसलिए वो नहीं उठाया। तो हे लक्ष्मी जी, आपको प्राउड होने का कोई जरूरत नहीं है। अरे आपका सम्मान तब है जब मैं हूं, जब मैं नहीं हूं तो आपका कोई सम्मान नहीं है। हनुमान जी भी जग गए, जगे थे। अच्छा, तो भगवान नारायण के चलते लक्ष्मी का सौंदर्य है, भगवान के चलते भक्त का सौंदर्य है, भगवान के चलते जन्म का सौंदर्य है, भगवान के चलते धन संपत्ति का सौंदर्य है। श्रुता विद्या सौंदर्य इन सब का अस्तित्व है जब भगवान साथ में है। यदि भगवान नहीं है तो मुर्दा मात्र है। तो यह सब वस्तुएं व्यक्ति को एदो अधोपमान मदोपमान, व्यक्ति को जन्म ईश्वर श्रुता श्री भी एधमान अधोपमान, उस व्यक्ति को अध मतलब नीचा बना देता है ये अहंकार ला कर करके। इंद्र में यह अहंकार हो गया था, ऐश्वर्य का अहंकार, ऐश्वर्य त्रिभुवन तीनों भुवन के स्वर्ग का अहंकार हो गया था, इसलिए वो असत पथ को अपना लिया था। एक दिन का बात है, इंद्रासन में इंद्र बैठे हुए थे, वहां सची थी उनकी पत्नी, विभिन्न प्रकार के देवता लोग थे, सिद्ध चारण इत्यादि, बहुत नाच गान चल रहा था, माहौल था नौटंगी का। उस समय उनके गुरु बृहस्पति जी वहां पर आए। ततो निर्गत्य सहसा कबीर अंगिरस प्रभु अजायो स्वगृह तुष्णी विद्वानसी श्रीमद श्रीमद विक्रियाम। वे आए लेकिन इंद्र देखे कि गुरुजी आए, लेकिन फिर भी अपने आसन से उठे नहीं, उनका सत्कार नहीं किए, उनका अगवानी नहीं किए। यहां पर शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असत पथ, असत पथ को अपनाए, सत पथ और असत पथ। सत पथ क्या है कि जब श्रेष्ठ लोग आए तो उनका अगवानी करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और असत पथ है अपमान करना। तो इंद्र ने अपमान किया, बृहस्पति समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इसका समय आ गया है, और बृहस्पति जी बिना बोले वहां से चल दिए। जब वे चले गए अपने घर वहां से, तब इंद्र को मालूम हुआ। इंद्र कम से कम इतना तो था कि उसे गलती भान हो गया कि मुझसे गलती हो गई, रियलाइज किया कि मुझसे गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारने के लिए वह अपने को बहुत धिक्कारा। इसलिए मैं प्राय कहता हूं 4R फॉर्मूला है, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन। पहले रियलाइज करना चाहिए कि मुझसे कोई गलती हो गई हो। हम सब लोग जानते हैं कि गलती क्या है और सही क्या है, गलत करते हैं तो भी जानते हैं कि हम गलत हैं, और सही करते हैं तो भी जानते हैं कि सही है सही है। लेकिन जिसमें अहंकार होता है वो गलती को स्वीकार नहीं करता है, और जो अहंकार शून्य होता है वो रियलाइज करता है, स्वीकार करता है, जिसे गलती हुई है उसके चरणों में जाकर के क्षमा मांगता है। यदि पता न हो तो दूसरे से पूछता है। एक समय की बात है, श्रीपाद रूप गोस्वामी नित्य लीला प्रविष्ट थे, भगवान की लीला का चिंतन कर रहे थे। एक बार एक वैष्णव जो अष्टवक्र थे वे वहां से प्रवेश किए। लेकिन रूप गोस्वामी उस समय लीला में चिंतन कर रहे थे कि राधा रानी और कृष्ण में कैसे झगड़ा हुआ और बाद में कृष्ण उनको मना लिए, और यही भाव देख करके रूप गोस्वामी हंस दिए। और उसी समय वो अश्वक्र ब्राह्मण वहां से जा रहा था, वो लंगड़ा था, टेढ़ा चल रहा था, तो वह समझ लिया कि मुझ पर रूप गोस्वामी हंसे। उसने इसे अपराध स्वीकार कर लिया कि अपराध किया उन्होंने, इतने बड़े महात्मा होकर के हम पर हंस कैसे सकते हैं। यदि कोई हमारे आचरण से अपराध स्वीकार भी कर ले, हम भले अपराध न किए हों, यदि आचरण से अपराध स्वीकार भी कर ले, तो हमारा भक्ति में जो अपराध का अर्थ क्या होता है, अपराध, राध मतलब प्रेम और अप मतलब खत्म हो जाना, प्रेम खत्म हो जाएगा। नाम जप करो लेकिन प्रेम नहीं आएगा, मैकेनिकल नाम जप होगा। इसे कहा था अपराध शून्य होया करो ये भजन, दयाल निताय चैतन्य बोलो नाच रे अमर मन। अपराध शून्य होकर के भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जब भी वे ध्यान में बैठते थे और भगवान की लीला दिखाई नहीं पड़ती, केवल अंधेरा दिखाई पड़ता था, बड़े व्यग्र हो गए रूप गोस्वामी। एक दिन सनातन जी आए, सनातन से पूछे कि क्या हो गया, मैं जानता नहीं, मैं जानकर किसी को अपराध नहीं किया हूं, लेकिन कोई अपराध स्वीकार कर लिया है, किसी प्रकार से अपराध हो गई है जान में अनजान में, बताइए मैं क्या करूं। तो सनातन जी ने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि फीस्ट दो। इसीलिए भक्तों को हमें फीस्ट देना चाहिए है? तो उसमें गिने चुने वैष्णव लोग थे, बोला कि जो लोग आ जाएंगे तो समझ लेना, सॉरी जो नहीं आया तो समझना कि उसके चरणों में तो अपराध किए हो। तो रूप गोस्वामी फीस दिए, सब लोग आए, लेकिन वो अष्टवक्र वैष्णव जो थे वो नहीं आए। तो रूप गोस्वामी जाकर के क्षमा मांगे, बतलाए कि वो बताए कि क्यों वहां से, और बताए कि क्यों वहां से, तो इस प्रकार से अपराध समापन हुआ। तो रियलाइजेशन रिपेंटेशन, रियलाइज करो, रिपेंट करो कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया। इंद्र रिपेंट किए, अहो बता मया साधु कृतम वही दंभ बुद्ध अबुद्धिना, कहते हैं हाय हाय धिक्कार है, असाधु मैं जो काम किया बोलत बहुत गलत काम किया, असाधुम कृतम, कहते हैं वही दंभम बुद्धिना, ये असाधु काम कैसे होया, कहते वही मतलब निश्चय ही दंभ अबुद्धिना, दंभ के चलते इस अहंकार के चलते मद के चलते मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, जिसके चलते मैंने अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया। को गृहेत पंडितो लक्ष्मी, तो वैसे धन का क्या आवश्यकता, जिस धन से वैष्णव का सेवा ना हो सके, जो धन मद का कारण पड़े, वैष्णव अपराध का कारण पड़े, इस प्रकार से अपने को वे धिक्कार रहे थे, कोस रहे थे, कोस रहे थे। तो रियलाइजेशन रिपेंटेशन अब रेक्टिफिकेशन, अब रेक्टिफाई करने के लिए वे चल दिए। सभी देवताओं को जो वहां पर लोग थे उन लोगों को लेकर के वे सोचे कि मैं जाऊंगा, अथा अहम अमराचार्यम अगाध अधिश्रम द्विजम प्रसाद इससे निषठ शिष्णा तत्चरणम स्पृशम, अब मैं जाऊंगा उन सभी देवताओं के साथ में जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। क्योंकि वह अकेले बैठे नहीं थे, अन्य देवतागणे बैठे हुए थे, कोई सम्मान नहीं किया, तो सबने अपराध किया। इसलिए कहते हैं अथा अहम, अथ मतलब अब मैं, अमर समस्त देवताओं के साथ में जाकर के आचार्य के चरणों में अगाध अधिष्ठम, जो अगाध अधिष्ठ हैं यानी ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ऐसे आचार्य के चरणों में मैंने अपराध किया है, जाकर उन्हें मनाऊंगा, प्रणाम करूंगा, और ऐसा सोचते हुए वे वहां से चल दिए। अब यह बात बृहस्पति जी को भी मालूम हो गया कि इंद्र चल दिए हैं। अब तक से बृहस्पति जी थे अपने घर पर, लेकिन जब इधर से इंद्र चले तो वहां से बृहस्पति जी भी चल दिए, वो अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र अपने तो ढूंढ रहे थे, अन्य देवताओं को जाओ चारों तरफ देखो गुरु जी कहां है। अब सब जगह गए खोजने के लिए, लेकिन कहीं गुरु जी मिले नहीं। अब इंद्र आए अमरावतीपुरी और समस्त देवताओं के बीच में बैठ कर करके अब विचार करने लगे कि राज्य कैसे चलेगा। किसी राज्य को चलाने के लिए छह वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रथम वस्तु है गुरु, दूसरा वस्तु है मंत्री, तीसरा वस्तु है सैनिक, चौथा वस्तु है लक्ष्मी, पांचवा वस्तु है नागरिक, और छठा वस्तु है टेरिटरी। तो ये छह वस्तुएं होना चाहिए राज्य को सम्यक रूप से। मोदी जी को आप लिखते लेटर, छह वस्तु चाहिए। छह वस्तु रहेगा तो सम्यक रूप से राज्य होना जाए। उसमें प्रथम जो है वह है गुरु। आज गुरु नहीं है। भागवतम में जब महाराज चित्रकेतु बड़े दुखी थे तो उस समय अंग्रेजी आए तो उन्होंने कहा कि आपके राज में छह वस्तु ठीक थे है ना, ये छह सब ठीक है ना, तो पूछे थे भागवतम के आगे, इसी स्कंद में आगे पढ़ेंगे। तो गुरु जी नहीं थे, और पहले कम्युनिकेशन सिस्टम आज से बहुत अच्छा था। आजकल वायरलेस जो है, देखिए ना कम्युनिकेशन सिस्टम, इधर इंद्र सोचे कि अब मैं जाकर के गुरु जी के चरणों में अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा, और उधर बृहस्पति को मालूम हुआ कि इंद्र चल दिए वहां से, बूम चले गए कम्युनिकेशन। अब इधर ये चले गए थे बृहस्पति जी, यह बात असुरों को मालूम हो गया कि अब बृहस्पति जी नहीं है। अब असुर लोग आक्रमण कर दिए, चढ़ाई कर दिए, अपने तीक्ष्ण बाणों से देवताओं पर प्रहार करने लगे। आए बाबू आए मां, ये सब करने लगे, हाथ पैर टूट गया, मारे गए कितने लोग, भागते रहे भागते रहे, सब भाग गए वहां से, सब परास्त हो गए, हाय हाय करते करते। कुर्सी पर बैठ करके सो गए तो कहीं कुर्सी उलट जाएगी फिर क्या होगा, शरीर ऐसे ही भारी है, तुमको ही कह रहा हूं, ठीक से सीधे बैठो। अब देवता लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास करें जाकर के अन्य विनय करने लगे, सब बात बता दिए कैसे कैसे क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत खराब तुम लोगों ने काम किया, अहो बताओ असुर श्रेष्ठा ही अभद्र कृतम महत, तुम लोग अभद्र महत महान अकल्याणकारी कान अन्याय किए, अभद्र मत अन्याय, तुम बहुत बड़ा अपराध किए हो, अन्याय किए हो। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दांतम, तुम ब्राह्मण के चरणों में इस प्रकार से अपराध किए हो। खैर जो हो गया सो हो गया। अब ब्रह्मा जी को भी डर लग गया, कहे इंद्र तुम्हारा ही राज ये असुर लोग नहीं छीनेंगे, आज ये लोग इतने बलवान हो गए हैं शुक्राचार्य के कृपा से, मघवम द्विशत पश्य प्रशिक्षणाम गुरु अतिक्रमात्, गुरु अतिक्रमात्, गुरु के कृपा से आज ये लोग इतने पराक्रमी हो गए हैं कि कुछ भी काम कर सकते हैं है? और तुम लोग गुरु के अनादर करने से तुम लोगों में वो शक्ति नहीं रह गई है। तो गुरु अतिक्रमात के दो अर्थ होंगे, एक गुरु के कृपा से कोई भी कर्म करने में असमर्थ, और दूसरा गुरु के कृपा न होने से तुम लोग सब कुछ होने होते हुए भी निर्बल हो। कहते हैं ऐसा लग रहा है कि यह जो असुर लोग हैं आददीरम निलयम ममापि भृगु देवता, इतने लोग प्रबल हो गए भृगु देवता, जिनके देवता भृगु वंशी शुक्राचार्य हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्टेड ये असुर लोग इतने बलवान हो गए हैं कि आददीरन निलयम, निलयम यानी सत्यलोक, सत्यलोक पर भी आक्रमण कर लेंगे, सत्यलोक को भी प्राप्त कर लेंगे, ममापी मुझको भी भगा देंगे सत्यलोक से, तो इंद्र तुम ही खतरे में नहीं हो, मैं भी खतरा में हूं, इतने बलवान हैं। और फिर बाद में वैष्णव सेवा का महत्व बतला रहे हैं, कहते हैं न विप्रगोविंद गविश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम, न भवन्ति अभद्राणि, न भवन्ति अभद्राणि, वहां पर कोई अमंगल चीज नहीं होता है, कहां पर, जहां पर विप्र यानी वैष्णव ब्राह्मण गोविंद भगवान गोविंद और गव यानी गाय, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वे इस बात को जानते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं वे जानते हैं इस बात को कि जहां पर ब्राह्मण वैष्णव और गाय का सम्मान होता है वहां पर कोई अमंगल चीज नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। इसी संबंध में अन्यत्र वृद्धज गोस्वामी कहते हैं ब्राह्मणम कुलम संपन्न भक्तम विष्णु महात्मना अयांतम विक्षना उत्तिष्ठे स दुखै परिभूयते। यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न लेकिन वो संपन्न होना चाहिए ब्राह्मण के गुण से, जन्म लेकर के दो पैसा का जनेऊ लगाने से नहीं, कहते हैं ब्राह्मण कुल संपन्न, ब्राह्मण कुल में जन्म और ब्रह्म ज्ञान यानी भगवत भक्ति में उसे निपुण होना चाहिए, यदि वो ऐसा रहेगा तब कल्याण होगा, भक्त भक्त होना चाहिए और विष्णु और भगवान विष्णु, यानी ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण लेकिन जो संपन्न हो ब्राह्मण के गुण से, जो भक्त हो और विष्णु, इनके महात्म को जानते हुए जो इनका आदर करता है वो सब दुखों से परे रहता है, और जो इनका अनादर करता है आयांतम विक्षम न उत्तिष्ठे, ऐसा ये श्लोक है, इसी पर मैं श्लोक लिया था लेकिन फिर भी, कि यदि कोई ए ब्राह्मण आ जाए उच्च कोटि का, वैष्णव आ जाए भगवान आ जाए और आसन पर बैठा यदि न उठता हो न उत्तिष्ठे स दुखई पर भूवते, वो दुख के सागर में डूबता रहेगा। तो दुख के सागर से निकलने का तरीका है कि ब्राह्मण गाय और विष्णु का सम्मान करना, जहां पर तीन का सम्मान होता है वहां कोई दुख नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से इन लोगों को बताए और बताने के बाद कहते हैं कि देखिए आज के दिन हम सब देवताओं पर बहुत बड़ा विपत्ति आई है, तो अब उसका उन्मूलन कहते हैं, कहते हैं ततः विश्वरूपम भजतास विप्रम तपस्विनम त्रष्टा आत्मवंतम। हे देवताओं त्वष्टा पुत्र विश्वरूप जो हैं बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप लोग उनके शरण में जाएं, यदि उनके धृष्टता को आप लोग सहन कर सकते हैं, यदि क्षमिष्व क्षमिष्वधम उतास्य कर्म, यदि आप लोग उनके द्वारा किया गया थोड़ा गड़बड़ काम है। गड़बड़ काम यह था कि विश्वरूप की माता जो रचना थी वो असुर कुल की थी और पिताजी देवता कुल के थे, त्वष्टा द्वाहत्य में थे। अब वहां क्या तकलीफ है, शास्त्र नीति के अनुसार शास्त्र कहता है कि जो पुत्र होता है उसमें मां का और मां के खानदान का गुण आता है, और जो पुत्री होती है उसमें बाप के और बाप के खानदान का गुण आता है। तो चूंकि मां जो रचना थी वह किस खानदान की थी, असुर खानदान की थी, तो उनमें थोड़ा प्रेम है। विश्वरूप महान वैष्णव है, सब कुछ है, लेकिन मां के कुल यानी ननिहाल के तरफ उनका थोड़ा लगाव है। यदि आप लोग इसको सहन कर सकते हो तब तो उनको आप लोग जरूर गुरु बना लो। इस प्रकार से देवता लोग गए और उनको सब बात बताए, और हालांकि शुरू में तो वे मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पुरोहित गिरी कौन करे, यदि खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था है तो पुरोहित गुरी कौन, पुरोहित बनना बहुत डेंजरस काम है, सिंफुल एक्टिविटीज है, दूसरे का पाप लेना, तो नहीं चाहते थे। लेकिन कहे ठीक है, आप हमारे पितर हैं, पिता तुल्य हैं, तो आप लोग ऐसा इतना अनुनय विनय कर रहे हैं तो हम स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से वे स्वीकार किए, और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुरादिशाम श्री हगुप्ताम औसनस्य अपिविद्धया आछिन्ना आदात महान्द्राय वैष्णव्य विधया विभू। दो विद्या का यहां पर वर्णन किया गया है, एक तो औसन यानी शुक्राचार्य के विद्या का, वो पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस से एक्सपर्टली शुक्राचार्य देवताओं के धन को सुरक्षित कर लिए थे, कोई ले नहीं सकता था। लेकिन वैष्णव बड़े चलाक होते हैं, जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, वैष्णव बड़े चलाक होते हैं। कहते हैं आछिन्न, उसको छीन लिए असुरों से, और छीन करके अदात महेंद्राय इंद्र को वह दे दिए। कैसे दिए, वैष्णव्य विधया विभू, वैष्णवी विद्या से यानी भक्ति के द्वारा। हनुमान जी, ओ हनुमान जी, समुद्र में जरूर गिरोगे। तो वैष्णवी विद्या के द्वारा, वैष्णव विद्या के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा, भक्ति में बहुत शक्ति है। हम देखते हैं कि लाइफ मेंबरशिप प्रीचर लोग जिनमें भक्ति होती है, भक्ति करते हैं, क्या समझते हैं कि जो शुक्राचार्य के नाती पोते हैं अरबपति खरबपति लोग, वो सब अपना माल किसी को बताते नहीं हैं, छिपा करके रखे हैं, गुप्ता छिपा कर, अपने पत्नी को नहीं बताते हैं, बच्चों को नहीं बताते हैं, स्विस बैंक में रखे हैं, कहां रखे किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन भक्त लोग जाते हैं और उनसे पैसा निकाल कर ले जाते हैं। कैसे निकाल कर लाते हैं, वैष्णव्या विधया, वैष्णव विधि से यानी भक्ति के विद्या के द्वारा। मुझे याद है एक सरदार जी थे चरनी रोड पर, का नाम मैं भूल रहा हूं, उनका बेयरिंग का काम था, तो लाइफ पर बनाने गए थे, कृष्ण कृपा था और मैं, हम दोनों आदमी गए थे। मैं ऐसे ही जाता था कभी नेताई के साथ में कभी कृष्ण, तो कृष्ण कृपा उनके पीछे बहुत दिन से पड़ा था लाइफ में बनाने के लिए, नहीं बन रहे थे, तो हमको लेकर गया कि आप चलिए शायद, तो हम बात करते 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 वो स्वीकार कर लिए और लाइफ मेंबर बन गए। तो क्या कहते हैं कि सब लोग तो गाय से दूध निकालते हैं, ये हरे कृष्ण वाले जो हैं वो बैल से भी दूध निकाल सकते हैं। है? तो शुक्राचार्य जो थे बहुत छिपा कर रखे थे इस धन को, लेकिन विश्वरूप जी वैष्णव्या विधया, वैष्णव विद्या के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा उसको निकाल करके, विभू समर्थ थे, निकाल कर करके और ला करके दे दिए देवताओं को। जितने लाइफ मर्सी प्रीचर, कितने हैं यहां पर क्लास में लाइफ मर्सी प्रीचर, कितने हाथ उठाओ? तो प्रीचर कोई है लाइफ मर वाला? लाइफ मर्सी प्रीचर तभी कलेक्शन कर सकते हो जब मंगला आरती, क्लास और गुरु पूजा पक्का हो। याद रखो, ये ट्रिक कभी काम नहीं करेगा। ट्रिक जो है वो शुक्राचार्य का विद्या है, वो ट्रिक से काम नहीं आएगा। यहां भागवतम प्रमाण है, जो भी काम करते हैं भागवतम प्रमाण अवलंबम, प्रमाण भागवतम है। भागवतम क्या कहता है? वैष्णव्या विधया विधया विभू, भक्ति करो, भक्ति से शक्ति मिलेगी। जो लोग पहला छिपा कर रखे हैं वो निकाल कर ला सकते हो, जैसे विश्वरूप ने किया, जैसे विश्वरूप ने किया। तो इस प्रकार से अब यहीं पर ये समाप्त हुआ अध्याय, और आगे विश्वरूप पुरोहित बनकर के क्या करेंगे, नारायण कवच का ज्ञान देंगे, वो आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं इस श्लोक के ऊपर। समय है ना आप लोगों के पास? समय अपने हाथ में नहीं है, हम समय के हाथ में हैं। सब बोलते हैं हैं समय, जिनके पास समय नहीं खड़ा हो गया ऑलरेडी, वो आशीर्वाद नहीं चाहिए निमरका वाला, चाहिए हरे कृष्ण वाला आशीर्वाद। चलिए दोहराइए मेरे पूछे, यह पारमिष्ट अधिषणम अधिष्ठितम न कंचन प्रत्युतिष्ठेदित ब्रूयो धर्म धर्मम तेना परम विदु। अब यहां पर इंद्र अपने पश्चाताप में, रिपेंटेशन में, ये रिपेंटेशन का श्लोक है, रिपेंट कर रहे हैं, करें धिक्कार है वैसे धन का जो कि व्यक्ति को अहंकारिक बना देता है, और अहंकार में वो दूषित हो जाता है उसका मन। ऐसा धन कौन स्वीकार करेगा जो धन उसे अहंकारी बना देता हो? तो इंद्र सोचते हैं कि लेकिन मैं तो राजा हूं ना। जो राजा होते हैं उन्हें नरदेव कहा जाता है, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि ननु सिंहासनस्थो राजा अभित्थानम न कुर्यात् इति वृदा वदन्ति अत्र। वृदा यानी विद्वान लोग, जो शास्त्र के मर्मज्ञ लोग हैं, वो कहते हैं ननु मतलब निश्चय ही, सर्टेनली, नो डाउट। सिंहासन स्थितो, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो राजा है, राजा अभ्युत्थानम न कुर्यात्, यदि कोई आ जाए तो उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरदेव है, वो भगवान का प्रतिनिधि है, उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वान कहते हैं। इति वृदा वदंती तत्र आह, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अब इसी बात को विद्वान के बातों का खंडन करते हैं इंद्र। ऐसे कभी कभी नहीं हो जाता है, हम लोगों पर खूब दुख होता है या कुछ गलती होती है तो कोई कहता है अरे गीता में बोला गया, अरे गीता को रखो अपने पास, गीता में क्या बोला गया है, इधर हमें विपत्ति पड़े गीता पर बात पढ़ा रहे हो। तो ऐसे ही मानो यहां पर कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं यह पारमेष्टम धीषणम अधिष्ठिनम न कंचनम, जो लोग ऐसा कहते हैं कि राजा को अपने सिंहासन से किसी के आने पर भी कभी भी कोई भी हो उसे प्रतिउत्तिष्ठत नहीं उठना चाहिए, कहते हैं ब्रूयम धर्मम तेना परम विदो, वे लोग परम धर्म को नहीं जानते। हालांकि इंद्र गुस्सा में बोल रहे हैं, रिपेंटेशन के भाव में बोलेंगे, बात सही बोल रहे हैं। देखो धर्म ये तो ठीक है, ये धर्म है कि यदि कोई राजा है वो नरदेव है और किसी के आने पर उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, बात सही है। शास्त्र कहता है, विद्वान लोग कहते हैं, लेकिन जो राज सिंहासन पर बैठता है उसे धर्म और अधर्म में भेद जानना चाहिए। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, किसके आने पर उठना चाहिए और किसके आने पर नहीं उठना चाहिए, ये उसको जानना चाहिए। एक बार 84 या 85 का बात है, मैं गेस्ट हाउस मैनेजर था, वाइस प्रेसिडेंट था, गेस्ट हाउस मैनेजर दोनों था। तो उन दिनों मैं नया नया मैनेजर बना था, मैनेजर को नहीं था तो वाइस प्रेसिडेंट तो एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया था। उस समय ब्रह्मचारी लोग अत्याचार बहुत कर रहे थे, वो गेस्ट हाउस से बेडशीट, पिलो कवर, तावल सब लेकर भाग जाते थे, फुसला लेते थे, वर्करों को डर जाते थे, वर्क देते थे। तो मैंने नियम बना दिया कि कोई बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, किसी को भी न तो आज के बाद बेडशीट जाएगा, न तावल जाएगा, न कुछ भी जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। सब लोग पालन कर रहे थे। अब एक दिन श्रीधर स्वामी को चाहिए था बेडशीट और तावल, ये लोग मना कर दिए गेस्ट हाउस वाले। अब जो लोग श्रीधर स्वामी के जानते हैं वो जानते हैं, क्षणापि तुष्टम क्षणनपि रुष्टम, ये हैं श्रीधर स्वामी। जारे नहीं रहे तुरंत बड़े खुश हो जाते थे, तुरंत बड़े नाराज होते थे, लेकिन बड़े जॉली स्वामी थे, फ्रेंडली थे। तो महाराज बड़े गुस्सा में थे, वर्करों से कुछ नहीं बोले, स्टोर में कुछ नहीं बोले। उनका सर्वेंट आई थिंक हरिदास था, अभी जो हरिदास प्रभु जो महामीरा रोड में है ना, तो पता नहीं मिर्चा मसाला लगा करके हरिदास कुछ बोल दिया होगा महाराज से। महाराज तुरंत ऑफिस से नीचे आए, मैं लबी में ही घूम रहा था। उन दिनों ये दो दरवाजा नहीं था लबी में, केवल एक ही दरवाजा था, जहां पर अपना अभी स्क्रीनिंग होता है ना, वही दरवाजा था, साइड का दरवाजा नहीं था, तो बाद में उन्होंने खोले। तो इस साइड का जो दरवाजा है गौरांगा टावर, वहां दो कुर्सियां होती थी, तो ऐसे मैं कुर्सी पर बैठा था। को सिखाया गया था उन दिनों, आज भी वो सत्य है कि मैनेज बाय वॉकिंग, ऑफिस में बैठ करके मैनेज मत करो, गो अराउंड। और वो आदत आप तक मुझ में है, मैं जाते रहता हूं, देखता हूं कहां क्या है, क्या गड़बड़ है, क्या ऑफिस में बैठकर क्या पता चलेगा, बाहर पता चलेगा। कल ही मैं जा रहा था तो देखा वहां पर ईंटा आया हुआ है तुलसी गार्डन के बाद। तो आजकल गीता भागवत उतना पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि कानपुर का काम चल रहा है, लेकिन कोई सीमेंट का भाव पूछे, ईंटा का भाव पूछे, मार्बल का भाव पूछे, तो उस समय आजकल ज्यादा जानता हूं। और ईंटा में अंतर क्या है, फर्स्ट क्लास का ईंटा, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ईंटा पता चलता है। तो ऊंटा देखते ही मैं समझ गया कि थर्ड नहीं है, फिफ्थ क्लास का ईंटा है। मैं ऊंटा उठाया, इतना से छोड़ा, बम टूट गया। आई कॉल मुकुंद माधव प्रभु, मैं समझा कि गुरुकुल में काम हो रहा है। मैं एक ईंटा लगेगा, पानी आज ही डालो गल जाएगा, तो बिल्डिंग कहां से बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा ईंटा नहीं है, मेंटेनेंस वालों का है, खैर किसी का है, मंदिर का ईंटा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं वॉकिंग कर रहा था तो मैं ये देखा। एक दिन और हम लोग, वो गुप्ता माता जी आई थी और ये वो पुचका खाने का वहां पर है ना, मन कर रहा था, एक दिन चला गया वहां पर। तो हाथ धोने में गया तो वहां पर वो जिसमें कचरा डालते हैं डस्टबिन, जहां पर पानी पीने का है वहीं पर डस्टबिन रखा था। और एक बार स्टिंकिंग, गर्मी के दिन है, बहुत दुर्गंध आ रहा था। अब ऑफिस में बैठा होता तो कैसे पता चलता कहां दुर्गंध आ रहा, क्या आ रहा, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे। हमारा ईच एंड एवरीथिंग मेंट फॉर प्रीचिंग, सभी भक्तों को कुछ तकलीफ ऐसा है तो मैंने उनको बताना चाहिए। मैं तुरंत एक्शन लिया, बुलाया स्वीट वालों का, किसको हटाओ यहां से, इधर से उधर करो, लोग पानी पीने आ रहे हैं, दुर्गंध आ रहा है यहां से, सिंपल चीज है। तो एनीवे आई थिंक आई हैव गॉन ऑफ। तो मेन चीज था कि पहले हम लोग घूम करके मैनेज करते थे। गिरिराज स्वामी प्रेसिडेंट थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर था। तो अभी हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में जाते थे, ब्रह्मचारियों का लगेज चेक करते थे कि कौन क्या अपने लगे में रखा है, कितने ब्रह्मचारी तंबाकू भी ये भी रखते थे। एक हमारे बनर्जी जी थे, बेचारे नहीं, नहीं ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मभूत दास, उनको इसका आदत था। कितने भक्त लोग वो सिनेमा का गाना सुनते थे, कितने तो सब चेक करते थे हम लोग। उन दिनों ब्रह्मचारियों के पास एक चटाई, दो धोती, दो कुर्ता, एक नोटबुक, एक भगवत गीता, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ था ही नहीं, नो ट्रंक, नो बॉक्स, नथिंग। ये ब्रह्मचारी लाइफ था, तुम देखते थे। तो मैनेज बाई वॉकिंग, तुम यहां बैठे थे, महाराज आए, बड़े गुस्सा में थे, गुस्सा में थे, लेकिन हमको समझाए बड़े प्रेम से, कि मैं भी गुस्सा वाला था, अभी थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करता हूं कम होने का, मुझे भी गुस्सा थी उन दिनों। तो महाराज, मैं इधर बैठा था, महाराज इधर बैठे, और मेरे गलवाही किए महाराज, हमारे पीठ पर अपना हाथ रखे और बड़े प्रेम से समझाए, कहे आपने जो नियम निकाला है बहुत अच्छा नियम है, सही में इसमें गेस्ट हाउस का बेडशीट और तावल का बचत होगा ब्रह्मचारी आश्रम में। अच्छा ब्रह्मचारी लोग यूज करें कोई बात नहीं, वो यूज कर करके और फेंक देते थे कचरा की जगह पर। सीनियर ब्रह्मचारी, जूनियर नहीं, धन्वंतरी प्रभु इधर नहीं, वो पहले था धन्वंतरी, हमेशा हमारा उससे झगड़ा होता था। एनीवे, तो महाराज समझा रहे थे, बोल अच्छा चीज है, लेकिन महाराज वो जो बात बताए आज तक मुझे याद है और इस श्लोक में वो बात आ रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। महाराज कहे कि आपके जो अधनस्थ लोग हैं उनके लिए नियम ये ठीक है, जो आपके ऊपर हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो आप जब नियम बनाओ तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और वही बात यहां पर कहा गया है, ठीक वही बात कहा गया है। यहां पर कहते हैं कि ये नियम ठीक है, सामान्य नियम है, एक सामान्य धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म क्या है कि यदि कोई आ जाए, राजा सिंहासन पर बैठा है, यदि कोई आ जाए तो राजा नरदेव है, भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान सबके लिए पूज्य है, वैसे ही राजा भी सबके लिए पूज्य है, उसे खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन विशेष नियम यह है कि यदि राजा के ऊपर राजा का बाप आ जाए, राजा के ऊपर ब्राह्मण होते हैं, है? जो राजा बनाते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। आजकल तो वोट के द्वारा राजा बनते हैं, इलेक्शन के द्वारा, पहले राजा को ब्राह्मण लोग नियुक्त करते थे, जैसे महाराज बेन का कथा आप लोगों ने सुना है, है? कि उनके पिताजी, क्या नाम था बेन के पिता का, हाँ महाराज अंग, जो महाराज अंग बेन के अत्याचार से तप्त हो गए तो घर दोर छोड़कर संन्यास लेने चले गए। अब राजा कोई था नहीं, ब्राह्मण से क्या करना चाहिए, बिना राजा के राज कैसे चलेगा। तो वे लोग जानते थे कि बेन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन राजा का बेटा है, वे लोग उसको राजा बना दिए। एक बार ब्राह्मण लोग राजा नहीं बने, राजा बना दिए। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा बेन, ब्राह्मणों को उल्टा सुल्टा बोलने लगा, तो वही ब्राह्मण लोग जो राजा बनाए थे वो कहे कि हम राजा बनाना भी जानते हैं और राजा को नीचे उतारना भी जानते हैं। और इस प्रकार से ऐसे डांटे, ऐसे डांटे राजा लोग, राजा को डांट दिए ब्राह्मण लोग कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया, मर गया, डांटने से शौक लग गया। ब्राह्मण लोग इतने पावरफुल थे उनके डांट से। देखो कोई गलती करता है तो भय, गलती का दूसरा पहलू है भय, जैसे लाइट का दूसरा पहलू है, लाइट का दूसरा, व्हाट इज सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन ऑफ लाइट, अंधेरा। लाइट को स्विच ऑफ क्या आता है, अंधेरा। तो वैसे जो गलती होती है तो गलती का सेकेंड साइड क्या है, भय। जो गलती करता है उसमें भय होता है, और भय से ही मृत्यु आती है, भय से दुख होता है और दुख से मृत्यु आती है। एनीवे, तो ब्राह्मण लोग डांटे, उसे भय था और भय के चलते उसे हार्ट अटैक हो गया और मर गया। फिर भी ब्राह्मण लोग राजा नहीं बने, उसके शरीर को मथे, उसके जंघा को मथे, तब हुए महाराज पृथु। तो पृथु को वे लोग राजा बने। तो मैं कह रहा था कि ब्राह्मण लोग होते हैं ये राजाओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण सबके द्वारा पूजनीय हैं, चारों वर्णों के वे गुरु हैं ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हेड डिपार्टमेंट है। जितनी इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां हेड डिपार्टमेंट में है। किसी का हेड काट दिया जाए कैसा होगा, चाहे वो हेड को अंदर डाल दो, एनीवे बिना हेड के वो घोस्ट हो जाएगा, जीना संभव नहीं है। तो ब्राह्मण हेड होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए और वैष्णव के लिए, भक्त के लिए और विष्णु। यदि ब्राह्मण आ जाए, विष्णु आ जाए और कोई महान भक्त नारद आदि ऐसे आ जाए, तो कोई बड़ा से बड़ा भी राजा क्यों न हो, उसे अपने आसन से उठ जाना चाहिए, उठ करके उनका सत्कार करना चाहिए। प्रभुपाद जी इस श्लोक के उदाहरण में भगवान कृष्ण का उदाहरण दिए हैं कि जब भी भगवान कृष्ण द्वारका थे तो जब भी ये ऋषि लोग नारद आदि आते थे तो भगवान उठ करके उनका अगवानी करते थे, नारद जी का अगवानी किए। उतना ही नहीं, सुदामा स्वयं तो बड़े गरीब थे लेकिन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी थे और वैष्णव भी थे, दोनों थे। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, कहते कहा मैं दरिद्र हूं, मैं पापी हूं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया था इसलिए भगवान हमको अपने गलबाही किए। भगवान दौड़ करके आए, उठे ही नहीं बल्कि दौड़े उनका अगवानी करने के लिए। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महाराज कुंती भोज, महाभारत में कथा आती है कि महाराज कुंती भोज जब सुने कि शुक्राचार्य आए हैं, सुनते ही उठ करके बाहर जाकर उनको अगवानी किए। यानी कि मैं बैठा हूं, मैं राजा हूं, उनको आने दो। और शुक्राचार्य को आप लोग जानते हैं कैसे हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र यहां पर कहता है ब्राह्मणम कुलम संपन्न भक्तम विष्णु महात्मन अयांतम वीक्ष, अयांतम कोई आया वीक्ष मतलब देख करके, न उत्तिष्ठे जो नहीं उठता है, स दुखई परिभूयते वो दुख के समुद्र में डूबने लगता है। दुख आज है क्यों, कारण क्या है, क्योंकि विष्णु का अनादर हो रहा है, भक्तों का अनादर हो रहा है और ब्राह्मण मतलब वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति का अनादर हो रहा है। आजकल कहते हैं सेकुलर, सेकुलर बनना चाहते हैं तो मरो, वैदिक संस्कृति खत्म करो, ये कह रहे हैं ना, ये एजेंडा है ना। शास्त्र कूट कूट करके भरा है कि सुखी कौन रह सकता है, दुखी कौन रह सकता है, सुखी बनने का तरीका क्या है, दुखी होने का तरीका क्या है। दुखी होने का तरीका यहां बताया गया है अयांतम विच्छनौतिष्ठे स दुखई परिभूयते, इन लोगों का जो सम्मान नहीं करता है वो दुख के समुद्र में डूबता है। और सुख के लिए बताया गया है न विप्रगोविंद गविश्वणा नाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वणा नाम, नरेश्वणा नाम जो वैदिक संस्कृति को जानता है, नरों में ईश्वर, जो शास्त्र के मर्म को जानता है, न भवंती अभद्राणी उसका कभी अमंगल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि गो विप्र गोविंद गविश्वणा, वो गोविंद का, वैष्णवों का और गौओं का सम्मान करता है। जहां पर वैष्णवों का सम्मान हो, जहां पर वैदिक संस्कृति का सम्मान हो, गायों का रक्षा हो और भगवान का भजन हो, वहां पर न भवंती अभद्राणी, वहां कभी भी अमंगल नहीं होगा, केवल सुख ही सुख रहेगा। तो इंद्र इसी बात को यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि राजा को किसी के आने पर नहीं उठना चाहिए, धर्मम तेन परम विदु, वे लोग परम धर्म को नहीं जानते हैं। इसका मतलब प्रमाणित करता है कि इंद्र जानते थे परम धर्म को, लेकिन अहंकार बस मद बस नहीं कर पाए। मद बड़ा खतरनाक चीज है। जैसे दुर्योधन कहता था कृष्ण से, कहा कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन दुख की बात है कि धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है, क्या करूं मैं। तो वैसे ही जानते थे कि अधर्म क्या है धर्म क्या है, इसीलिए रिपेंट करते हुए यहां पर इस बात को कह रहे हैं। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म तो यह है कि कोई डिपार्टमेंट हेड हो, प्रेसिडेंट हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि प्रेसिडेंट है तो लोग जाकर प्रणाम करे ठीक है, डिपार्टमेंट हेड है डिपार्टमेंट के भक्त लोग आकर के हरे कृष्ण प्रभु बोले प्रणाम करे ठीक है, लेकिन यदि उनका बाप आ जाए या उनके ऊपर वाला आ जाए तो उनको उठ जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति है। मैं देखा यहां पर पहले कल्चर था, हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए तो लोग आते थे बाहर तक, अरे महाराज आ गए कोई बात नहीं प्लीज आइए, और अपने कुर्सी पर तब तक नहीं बैठते थे जब तक से भक्त बैठ ना जाए, छोड़ने के लिए भी बाहर तो जाते थे। लेकिन आजकल वो कल्चर खत्म हो चुका है। मैं कल ही लेक्चर सुन रहा था और प्रभुपाद जी बेन का वर्णन कर रहे थे कि बेन ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कहीं पर आज के बाद दान न दिया जाए, ब्राह्मणों की और विष्णु की पूजा न की जाए, इसका ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले यदि राजा को कोई सूचना देनी होती तो बड़ा ढोलक होता था, है वो क्या सुनो भाई सुनो, है डन 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 करते आएगा, सब गांव वाले सुनने के लिए आएंगे। तो मुझे याद आ रहा था कि हम लोग छोटे बच्चे थे तो गांव में पंचायत होती थी तो गांव का एक हरिजन जो भी था वो बजाता था, बोला कि हां कल पंचायत है सब लोगों को वहां पर आना है। लेकिन आजकल खत्म हो गया, आजकल तो वो भोपू से हैं लाउड स्पीकर से सब बोल देते हैं सब जगह, नहीं तो टेलीविजन से और क्या क्या करते हैं। तो पहले का सभ्यता संस्कृति आज से बहुत रिच था सम्मान करने का। एनीवे तो इसे सीखना चाहिए कि हम लोगों को सामान्य धर्म और विशेष धर्म में अंतर समझना चाहिए। वैष्णव वही होता है जो दोनों में अंतर समझता है। सामान्य धर्म जो हमारे अंतर्गत है और विशेष धर्म जो हमसे परे है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरिदास को प्रश्न है जरूर, कुछ असीम कृष्ण पर कंप्लेन होगा। माइक कहां है? माइक तो माइक 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 संदीपनी कहां चला गया?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी।
हरे कृष्ण।
मैं थोड़ा सा ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए। आप बोलेंगे जो ब्राह्मण है जे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते?
बिल्कुल नहीं, शास्त्र का तो मैं नहीं कहता।
अच्छा सुदामा ये तो जन्म से ब्राह्मण
है?
सुदामा
जन्मना जायत शूद्र संस्कार द्विज भवेत वेद पढ़ेत भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। सुदामा जी ब्रह्म को जानते थे इसलिए वे ब्राह्मण है, न कि जन्म लेने से।
ठीक है। और दूसरी बात है पूरी पंडा ब्राह्मण और हमारे इस्कॉन ब्राह्मण, प्रभुपाद महाराज ने हजार हजार भक्तों को ब्राह्मण बना दिया और विदेश लोग को ब्राह्मण बना दिया। जब प्रभुपाद महाराज पूरी गए पंडा जी लोगों को निकाल दिया, जो नहीं तुम जगन्नाथ मंदिर जाने का तुम्हारा ये नहीं है क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं है, क्यों?
मैं आपको इसका उत्तर अकेला बताऊं चलेगा?
सबका सामने देना अच्छा है क्योंकि सब मालूम होना चाहिए ना।
जगन्नाथ ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर में गए हो?
हाँ जी।
परिक्रमा की हो जगन्नाथ जी का अंदर जाकर के?
अंदर नहीं जाते मैं।
नहीं गया? कोई गया है जगन्नाथ जी के पीछे? नहीं तो 2,500 रुपया दे दो पंडालों ले जाएंगे। वहां कितने कॉकरोच हैं कोने में, देखा कि नहीं? परिक्रमा करोगे तो सब कोने में इतने कॉकरोच बढ़े हुए हैं। पता है ये लोग कौन है? ये पंडा लोग हैं, वहीं पर रहते हैं। इसी में क्या क्या अकेला बताऊंगा आपको। देखिए जन्म से जो शास्त्र कहता है वे जन्मना जाए तो शूद्र ये विदेश मैं कहा शुरू में कथा के कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है कर्म से चातुर्वर्णमयाशिष्ट गुणकर्मा विभाग सर ब्राह्मण कोई बन सकता है कर्म के द्वारा तो प्रभुपाद जी ब्राह्मण बनाए ये है वैदिक संस्कृति लेकिन वो ब्राह्मण जन्म लिए हैं उनको अपॉर्चुनिटी है नाजी का सेवा करने का सब कुछ ठीक है लेकिन उनमें मद है जन्म श्रुत जन्म ईश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मद अपमान ये मद है अहंकार है किसका जन्म उच्च कोटि में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया अरे सोना में सुहाग लग जाएगा यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान विष्णु का भजन करो अति उत्तम हो जाएगा फर्टाइल लैंड है एक लैंड को फर्टाइल करना बाद में उसमें बीज डालना और एक फर्टाइल लैंड है तो उच्च कोटि में जन्म ये फर्टाइल है भजन करने के लिए ये जो ब्राह्मण परिवार में जन्म कौन लेता है भगवान गीता में कहते हैं यदि भजन तुम नहीं कर पाओगे जोगो भ्रष्ट अभिजायते जोग भ्रष्ट हो जाता है वो उच्च कुल में जन्म लेता है वो जोगी है उसके पास अपॉर्चुनिटी है ये मनुष्य देह एक अपॉर्चुनिटी है भगवान का धाम जाने के लिए लेकिन मनुष्य देह लेने से ही भगवान के धाम में नहीं जाओगे मनुष्य देह लेकर के भगवान का भजन करो तब भगवान के धाम में जाओगे नहीं तो नरक में जाओगे निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम सुलभम ये सुलभ है लेकिन सुदुर्लभम सबको नहीं मिलता है और पैर फिसल गया तो 84 लाख जोनि चक्कर काटने के बाद मिलेगा तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना बहुत अच्छा है लेकिन भजन करो यदि भजन नहीं करोगे तो कॉकरोच बनोगे ठीक है और कोई प्रश्न हाँ हनुमान जी जग गए हैं भाई दो जब माइक जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो लंका से कुछ न्यूज लेकर के आए हनुमान जी हनुमान जी के गुण आप लोग नहीं जानते हो हनुमान जी महान भक्त हैं अमेरिका से कहां कहां से आ गए नहीं बताएंगे चलिए हनुमान हमारा अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बुलाकाट पार्टी वाला हाँ माइक चालू करो भाई
हरे कृष्णा तो जब जब इंद्र इस बात को ध्यान गए कि उनसे अपराध हुआ है फिर वो क्षमा याचना करने के लिए उनके गुरु के पास गए तो गुरु वहां से अंतर्धान हुए क्यों अंतर्धान हुए उनको क्षमा क्यों नहीं किए
मैं सोच रहा था वैसे ये प्रश्न कोई पूछा क्यों नहीं वेल कभी कभी गुरु शिष्यों को लेसन देना चाहते हैं क्योंकि इंद्र एक बार गलती नहीं किए थे कितने बार पहले गलती कर लोगे थे तो एक बार क्षमा कर लें दो बार क्षमा कर लें कितने बार क्षमा करेंगे इसलिए लेसन देना चाहते थे इसलिए और कुछ नहीं और यदि ये नहीं होता तो नारायण कवच का ज्ञान कैसे हम लोगों को होता है भागवत में सुनते कैसे ठीक है और कोई प्रश्न यस परमाराध्य प्रभु हाँ कुकलेश्वर प्रभु
हरे कृष्ण कोई हम जब व्यासासन पे क्लास देते हैं तो बीच में पट खुलता है तो सेम एज भगवान आ रहे हैं और हम खड़े नहीं होते हैं इवन रोमहर्षण सुता भी पुराणास पे बोल रहा था और बलराम जी आए और खड़े नहीं हुए तो उनको मार दिया उन्होंने तो इधर क्या शिष्टाचार होना चाहिए
आपका बात बिल्कुल सही है मैनेजमेंट ने इसे बात करना चाहिए
तो आपसे वही पूछ रहे हैं ना
वास्तव में पहले क्लास का टाइमिंग अलग था 8:30 क्लास खत्म हो जाना चाहता पहले ओल्ड एज आई एम टॉकिंग ओल्ड एज आजकल तो टिफिन ब्रेक होता है बीच में ना पहले ब्रेक नहीं था 4:30 to 8:30 इन टेम्पल बट देर इज ऑल्सो अदर थिंग कि यहां पर आसन पर जो बैठा है वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार भगवान का ग्लोरिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग दर्शन और ऑफिन ऑब्सेंसेज. तो हम लोग बीच में बोलिए तेरा राधा बिहारी की जाए, गुणगान कर देते हैं, अब गुणगान यहां कर रहे हैं, तो इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है. फिलोसफिकली देर नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पर भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, भगवान का ही, इसमें और उसमें अंतर नहीं है. कहीं कहीं तो भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि यदि कोई पूजा भी कर रहा है और कोई वैष्णव आ जाए तो पूजा छोड़ दो, वैष्णव का सम्मान करो.
सो देन रोमहर्षण सूत्र ने क्या गलती किया, वो भी पुराना पे ही बोल रहा था. रोमहर्षण सूत्र वॉज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन द पुराना ओनली व्हेन बलराम जी केम.
आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर फॉर दिस, बट यू आर राइट, यू आर स्पीकिंग भागवतम. I don't think, not this Bhagavatam, but he was speaking something.
It is written there, he was speaking on Puranas.
Puranas, yeah. That's a speculation. I don't know, we can look into this thing. Or I call to internet day, dal do it, free forum par, pata chal jayega. Haan, Paramaradhyaya. लेकिन हम लोगों के पास ये प्रमाण है कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी क्लास दे रहे थे राधा कुंड पर, और भक्त लोग बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, और जो मंदिर खुला सब लोग उठकर गए हैं और भगवान को प्रणाम कर करके फिर आए. भक्ति सिद्धांत वहीं बैठे हुए थे. सो ही सेड, सो यू ऑल हैड ए गुड आई एक्सरसाइज. आई एक्सरसाइज, दर्शन को आई एक्सरसाइज. उन्होंने कहा कि तुम सुनोगे नहीं भगवान क्या है, भगवान कौन है, पत्थर का मूर्ति समझोगे. सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट है. सो वी आर इन दैट परंपरा. बात यही सही है कि कृष्ण के विषय में सुनने से ही हम कृष्ण को जानेंगे. ये कृष्ण को प्रणाम करने से कृष्ण को नहीं जानेंगे. अलग भक्ति है, प्रणाम करना भी हम सुने हैं. मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो. हम सुने इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, तो सुनना जरूरी है.
हरे कृष्ण. पहले शिष्य लोग ने, अभी जैसे कि शुक्राचार्य ने बृहस्पति ने उनको त्याग दिया इंद्र को, अभी के देख रहा देखा जा रहा है कि शिष्य ने गुरु को त्याग देता. तो इनमें से पहले का गुरु अभी का गुरु में कौन महान है,
वो आप जानते हो अच्छी तरह से. हम तो क्यों पूछ रहे हो, इसलिए मैं कथा से पहले ही बता दिया था. पहले गुरु त्याग देते, अब चेले त्याग देते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? वो पीछे है. हाँ चलो, इसे जल्दी 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 माइक दे. सबको भूख लगा, कितने लोग गाली देते होंगे कि प्रभु जी बड़ा परेशानी कर रहे हैं हम लोगों को.
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया जैसे गाय ब्राह्मण और विष्णु को जो सम्मान नहीं करते हैं उनका दुर्गति होता है, तो कुछ मुस्लिम संप्रदाय जैसे शेख अरब कंट्री में
क्या क्या क्या
जो गाय विष्णु और ब्राह्मण हाँ, का सम्मान नहीं करते.
सेकेंड पार्ट क्या था?
तो कुछ शेख मुस्लिम है जो ये तीनों को नहीं मानते हैं, पर उन लोगों का जीवन बहुत ऐश्वर्यमय है, आनंदमय है, ऐसा कैसे?
उस बात को आप जानते हो, वो जानते हैं,
वो ये तीनों को नहीं मानते.
मैं पूछ रहा हूं कि उनका उनका जीवन सुखमय है कि दुखमय है, इस बात को आप जानते हो कि वो लोग जानते हैं?
भौतिक सुखमय है, आध्यात्मिक तो शायद नहीं.
मैं पूछ रहा हूं, उतना उत्तर दो कि वो लोग सुखी हैं जो गाय को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, वैष्णव और गोविंद को नहीं मानते हैं, बड़े गल्फ कंट्री वाले या सोलो बोर्ड सुखी हैं, तो इस बात को आप जानते हो कि सुखी हैं कि वे लोग जानते हैं कि सुखी हैं? अच्छा, एक और दूसरा मान दे रहा हूं. एक बार मैं पहले बताया हूं, इस सर्वोदय हॉस्पिटल घाट के ऊपर है. तो 1982 में एक आंधी भाई देसाई या पटेल जो भी हैं, उन्हें बड़ी परेशानी थी डॉक्टरों से, डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया. तो आ गए हरेकृष्ण में. उन्होंने कहा कि हम हरे कृष्ण को पूरा घाट के ऊपर जो सर्वोदय हॉस्पिटल है हम दान दे रहे हैं. तो गिरिराज स्वामी हमको प्रेसिडेंट बना दिए घाट के ऊपर सर्वोदय हॉस्पिटल का. टीवी का हॉस्पिटल क्या क्या कितना गंदा है, हनुमान आप सब थे उसमें, समय थे अब थे. हम लोगों ने खूब सफाई किया, खूब सफाई किया, खूब सफाई किया। तो उन्हीं दिनों हम जाते थे घाट के ऊपर प्रचार करने के लिए। तो एक किसी भक्त के यहां गए थे तो वहां पर एक ब्रह्म कुमारी वाले कोई लेडीज आई थी, तो उसने कहा कि हमारे गुरुजी पहले विष्णु के भक्त थे, लेकिन वे विष्णु का भक्ति त्याग दिए। कहा क्यों त्याग दिए? कहा कि इसलिए कि वो लक्ष्मी को टॉर्चर करते हैं, पैर दबवाते हैं, लक्ष्मी को टॉर्चर करते हैं, पैर दबवाते हैं, इसलिए गुरुजी ने उनको त्याग दिया। इसलिए आप देखना ब्रह्म कुमारी में मोस्टली लेडी लोग ही रहती हैं, क्योंकि अपने पति का सेवा नहीं करना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी आपके गुरुजी के पास कंप्लेन करने आई थी क्या? अरे लक्ष्मी जी पैर दबा रही, उनको आनंद हो रहा, तब गुरु जी को तकलीफ क्या है? तो देख करके सब कुछ नहीं जान सकते हैं, सुन करके जानते हैं। देखने से आंशिक ज्ञान होता है। तो जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं, गाय को, गोविंद का, उनका जीवन फिजिकली मेंटली दोनों मिजरेबल है। टेंशन में इतना दवा खाते हैं, टेंशन में लग रहे हैं, भय से परे हैं। साधु लोग जो मानते हैं ना, वो निर्भीक हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन उन लोगों को हमेशा डर रहता है, और डर जो होता है वो दुख से होता है, उसे डर से दुख होता है, वो डरे हुए लोग हैं। साधुओं को कोई डर नहीं, नारद जी कहीं डर नहीं, वो हिरण्यकश्यप के पास भी जाएंगे, कंस के पास कहीं चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं उनको, ठीक है। तो सुखी नहीं है, केवल देखने में सुख रहते हैं, बाहर से देखो कितना हसीन है, लेकिन अंदर बिगड़ा मशीन है सब। तो वो लोग वैसे ही हैं, अंदर से बड़े बड़े दुखी हैं, मेंटली फिजिकली बड़े दुखी हैं। और कोई प्रश्न? पीछे किसी का प्रश्न था? चलिए, बोल रहे हैं कि कोई भक्त अमेरिका में सुना था, प्रश्न पूछ रहा था। चलो भाई अमेरिका का प्रश्न, हाँ क्या बोलिए? माइक दो असीम प्रभु को, अमेरिका का एक प्रश्न है भाई। नहीं बोले माइक को, सब लोग सुने ना, अमेरिका का प्रश्न है तो सुनेंगे।
उसका प्रश्न था, लेक्चर वो सुन रहा है, कि शुक्राचार्य कब गए थे कुंती भोज के? आपने कुछ बताया था शुक्राचार्य से? कुछ आपने तो बताया नहीं ना लेक्चर में से।
शुक्राचार्य हम बोल दिया,
हाँ शुक्राचार्य शायद गलती से बोले,
दुर्वासा मुनि गए थे ना। ओके कृष्णदास दुर्वासा मुनि थे, करेक्शन, माइनट करेक्शन। जब कुंती जी उनका सेवा करने आई थी, वो समस्त तत्वों को अपने बस में करना चाहते थे, महातत्वों को। और कोई प्रश्न? शुक्राचार्य में बोला नहीं, मैं कहा कि मैं दुर्वासा का गुण का, हाँ मैं कहा कि दुर्वासा कहते थे ना, तो लिप्स क्या करेंगे, इसमें हड्डी नहीं है ना, कुछ ही बोल लेता है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।